కాదు. భీష్మ పంచక కే ఉపలక్ష్య మే జో కథ యహాన్ ఆయోజిత్ కియా గయా హై శ్రీ శ్రీ రాధా గోకులానంద మందిర్ మే, కార్తీక మాస్ ఔర్ భీష్మ పంచక ఇన్కి మహిమా కా సంక్షిప్త రూప్ మే వర్ణన్ కర్నే కే బాద్ హమ్ భగవాన్ కి దామోదర్ లీలా కి పృష్ఠభూమి దే రహే థే और बता रहे थे कि महाराज परीक्षित ने जब श्री कृष्ण के अनेक सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण किया है सुखदेव गोस्वामी से, तो वो आश्चर्यचकित हो गए. एक छोटे से शिशु होने के बाद भी श्री कृष्ण ने आसानी से पूतना, तृणावर्त, शकटासुर जैसे भयंकर असुरों का वध किया था. उन्होंने सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की थी बछड़ों बछड़ों के साथ में. उन्होंने मिट्टी खाई और माता यशोदा ने जब मुंह के अंदर परीक्षा की इच्छा से देखा तो उन्होंने मुख नहीं देखा, संपूर्ण विश्व देखा. भगवान का विराट रूप भगवान श्री कृष्ण के छोटे से मुखारविंद में दिखाई पड़ा. ये सब सुनकर महाराज परीक्षित सोच रहे थे कि नंद महाराज और माता यशोदा का कितना सौभाग्य है, विशेष करके माता यशोदा का. नंद किम करो ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा फहौ यस्यास्तनम हरि ही. राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, ये बताइए कि नंद महाराज और माता यशोदा ने किस तरह की तपस्या की होगी, कौन से पुण्य किए होंगे, क्या सुकृति आदि की होगी जिसके द्वारा उनको ये अहो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री कृष्ण न केवल उनके पुत्र बने परंतु श्री कृष्ण के सुंदर बाल लीलाएं उनके साथ में हुई. उन्होंने भगवान के इन बाल लीलाओं का दर्शन किया, इनमें भाग लिया और यहां तक कि माता यशोदा ने स्तनपान श्री कृष्ण को कराया, जो सौभाग्य माता देवकी को भी नहीं मिला था जिनके गर्भ से कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ. तो राजा परीक्षित ने जान लिया कि माता यशोदा का स्थान देवकी माता से श्रेष्ठ है, नंद महाराज का स्थान वसुदेव से श्रेष्ठ है, क्योंकि यद्यपि देवकी माता और वसुदेव जी श्री कृष्ण के माता और पिता माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार से हुआ फिर भी जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तुरंत श्री कृष्ण को ले जाया गया वहां से और वो गोकुल गए नंद महाराज और माता यशोदा के घर में. यद्यपि देवकी और वसुदेव ने श्री कृष्ण को जन्म दिया परंतु उनको श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ. जैसे ही जन्म हुआ तुरंत वो निकल गए वहां से, परंतु माता यशोदा और नंद महाराज दोनों ने खूब दर्शन किया, बल्कि उनके लीलाओं में शामिल भी हुए और यहां तक कि जैसे कि परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, तपो यस्यः स्तनं हरिः, स्वयं अपने स्तनों से दूध पिलाया श्री कृष्ण को. कितना सौभाग्य है उनका, अवश्य उन्होंने कुछ तो किया होगा जिसके द्वारा उनको यह सौभाग्य मिला. श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुना आर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि सुकृति किए बिना कोई भी श्री कृष्ण के पास नहीं आ सकता। अब ये चार प्रकार के सुकृति जो है, एक तो है जो पीड़ित है किसी दुख से कष्ट से, दूसरे है अर्थार्थी जो कोई धन आदि कुछ चाहते हैं, और तीसरे हैं जो जिज्ञासु होते हैं, और चौथी हैं जो ज्ञानी हैं। परंतु कोई ना कोई इच्छा लेकर वो भगवान के पास आते हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ भक्त नहीं कहलाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि नंद महाराज और माता यशोदा ने कैसी सुकृति की होगी। परंतु परीक्षित महाराज को जानते हैं कि नंद महाराज और माता यशोदा की सुकृति कोई साधारण सुकृति नहीं थी। जिस सुकृति का वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है, नंद महाराज और माता यशोदा का स्थान ये बिल्कुल नहीं था, इससे कहीं परे वो थे। इनमें बहुत बड़ा अंतर था, ये शुकदेव ये परीक्षित महाराज भी अच्छी तरह से जानते थे। वैसे नंद महाराज और माता यशोदा ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, और देवकी और वसुदेव भी नित्य माता पिता हैं। अब हम तो कह ही चुके हैं कि देवकी और वसुदेव की तुलना में नंद महाराज और माता यशोदा श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो माता यशोदा और नंद महाराज में दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? प्रभुपाद जी बताते हैं माता यशोदा श्रेष्ठ है, क्योंकि नंद महाराज बीच बीच में इधर उधर चले जाते थे अपने काम से। आखिर वो एक वैश्य थे, गायों का देखभाल करना, अपने व्यवसाय को संभालना आदि बहुत सारे काम उनके हुआ करते थे, जिसके कारण उनको बाहर जाना पड़ता था। परंतु जब से श्री कृष्ण प्रकट हुए माता यशोदा के घर में, तब से माता यशोदा ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में हमेशा भाग लिया, हमेशा वहां पर श्री कृष्ण के संग रहा करती थी, श्री कृष्ण का सानिध्य छूटा नहीं। जब से जन्म हुआ, जन्म के बाद उनकी बाल लीलाएं, शिशु रूप में उनकी मधुर लीलाओं का दर्शन माता यशोदा ने किया, हमेशा श्री कृष्ण के साथ में रहते थे। आगे चल के पौगंड लीला में, जबकि श्री कृष्ण गाय चराने के लिए भी वन में जाते थे, दिन में बाहर रहते थे, फिर भी माता यशोदा यहाँ साथ में रहती थी। श्री कृष्ण के सुबह को और शाम को श्री कृष्ण को तैयार करना, नहलाना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार कराना, प्रसाद आदि भोजन खिलाना, और शाम को जब आती थी तो वैसे ही। इसलिए माता यशोदा के प्रेम की जो तीव्रता है और जो निकटता है, जहां तक वात्सल्य रस का सवाल है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए माता यशोदा का स्थान नंद बाबा या नंद महाराज से ही श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद बतलाते हैं, जबकि वो वात्सल्य रस का वर्णन करते हैं, कि एक क्रम है, यदि हम वात्सल्य रस के महत्वपूर्ण भक्तों को का उनके बारे में हम विचार करें, तो ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे सिद्ध होता है कि माता यशोदा का नंबर पहला है। सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य रस के भक्त हैं माता यशोदा, दो नंबर पर हैं नंद महाराज, तीसरे नंबर पर हैं माता रोहिणी जो कि वैसे बलराम जी की माता हैं, चौथे नंबर पर हैं वो वरिष्ठ गोपियां जिनके पुत्रों को ब्रह्मा जी एक गुफा में छुपा लिए थे, जिसके बाद में ब्रह्म विमोहन लीला संपन्न हुई भगवान श्री कृष्ण की। ये भी बहुत श्रेष्ठ वात्सल्य रस के भक्त माने जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इन पुत्रों को, इन इन बच्चों को, ग्वालों को गुफा में छुपा लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने, बदलिए मत इसको, तो जब श्री कृष्ण ने ये देखा कि ब्रह्मा जी ने ऐसे कार्य किया है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को विस्तार कर दिया। जितने भी ग्वाल बाल थे वैसा ही उन्होंने रूप बना लिया, यहां तक कि उनके बोल चाल, उनका रहन सहन, उनके जितने भी कार्य करने के, बोलने के तरीके थे, वैसे के वैसे उन्होंने नकल कर दिए। दिखने में भी बिल्कुल वैसे लगते थे, और पूरे एक साल तक ये चला। और ये सारे ग्वाल बाल अपने माताओं के पास, पिता के पास जाते थे, और माताएं जो हैं ये उनको खिलाती पिलाती लाड प्यार करती। उनको पता नहीं चला कि ये उनके जो बच्चे हैं ये वास्तव में एक साल के लिए स्वयं श्री कृष्ण थे। इसलिए जो स्नेह उनका, उनको अनुभव हुआ उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो पहले नहीं अनुभव हुआ करता था। वृंदावन की विशेषता ये है कि वृंदावन के सभी निवासी श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि अपने बच्चों से ज्यादा। स्वाभाविक रूप से माता पिता अपने बच्चों को अधिक प्रेम करते हैं, अन्य बच्चों को कम प्रेम करते हैं, परंतु वृंदावन में ऐसे नहीं था। अपने बच्चों से भी ज्यादा ब्रजवासी श्री कृष्ण को प्रेम किया करते थे। तो जब इन महिलाओं ने देखा, गोपियों ने देखा कि न जाने क्यों आज हमारे पुत्रों के प्रति हमें उतना ही प्रेम का अनुभव हो रहा है जितना कि श्री कृष्ण के प्रति है, उनको क्या पता कि अभी श्री कृष्ण ही उनके पुत्र बने हैं एक वर्ष के लिए। इसलिए ये गोपियां बहुत श्रेष्ठ गोपियां मानी जाती हैं, बल्कि देवकी माता के से भी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसलिए इनका नंबर इस श्रृंखला में चार है, और माता देवकी जो कि श्री कृष्ण की माता है, जिनके गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए, वो पांच नंबर पे है। और ये पहले चार जो हैं, ये सब वृंदावन के हैं, गोप और गोपियां। नंद महाराज एक गोप है और बाकी सब गोपियां हैं, वरिष्ठ गोपियां। फिर पांचवे नंबर पर देवकी माता आती हैं, और देवकी माता के बाद वसुदेव नहीं है, छठे नंबर पर है वसुदेव की अन्य रानियां, रोहिणी देवी को छोड़कर जो और 15 रानियां थीं, वो भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इससे पता चल सकता है कि बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो माताओं का पिता से अधिक होता है। हालांकि पिता भी बच्चे से प्रेम करते हैं, परंतु माताओं का प्रेम पिताओं से श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए 6 नंबर पर हैं वसुदेव के अन्य रानियों का नंबर। और फिर है कुंती देवी, पांडवों की माता, और उसके बाद में है वसुदेव 8वें नंबर पर, और फिर 9वें हैं इस क्रम में सांदीपनि मुनि, जो कि कृष्ण और बलराम के गुरु थे। अवंतीपुर में उन्होंने श्री कृष्ण को उपदेश दिया था। तो हम देख सकते हैं कि यशोदा माता का स्थान कितना ऊंचा है, कितना महत्वपूर्ण है। तो वैसे साधारण दृष्टि से दुनिया में देखा जाए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, साधारण दृष्टि से देखा जाता है कि लोग भगवान की उपासना करते हैं, उनको अपना स्वामी मानकर, बहुत बड़े व्यक्ति मानकर, जो कि वो है, सबसे बड़े व्यक्ति हैं भगवान, लेकिन एक ऐश्वर्य की भावना रहती है। और जब वो भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान को कभी अपना मित्र नहीं मानते हैं, अपना पुत्र मानना तो दूर की बात है, अपना प्रेमी मानना तो और भी दूर की बात है। तो साधारणतः भगवान की जो कल्पना है, जो धारणा है लोगों के मन में, वो यहाँ तक सीमित है कि भगवान बहुत बड़े हैं, उनके बहुत सारे गुण हैं, बहुत कृपालु भी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं इत्यादि, और उनके शरण में हमें जाना चाहिए, उनसे डरना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, वो हमारा उद्धार करेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारा भरण पोषण करेंगे। तो ये सारी धारणाएं विद्यमान हैं दुनिया में, ये गलत नहीं है। भगवान ये सब हैं और ये सारे कार्य करते भी हैं। फिर भी अन्य जो संबंध हैं, जो पाए जाते हैं दुनिया में, उन संबंधों की को भी हम भगवान से जोड़ सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के भक्ति के अनुसार या ज्ञान के अनुसार हम जानते हैं कि भगवान के प्रति किसी आत्मा के 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। एक है शांत रस का संबंध। इसका मतलब है कि हम भगवान को बहुत महान मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं, भगवान की कृपा पर निर्भर होते हैं, परंतु सेवा भावना इतनी विकसित नहीं होती है। जब सेवा भावना विकसित होती है तो फिर व्यक्ति दास्य रस में भगवान की सेवा करता है, अपने आप को भगवान का दास मानता है, भगवान स्वामी हैं, प्रभु हैं और मैं भगवान का दास हूं, इसे दास्य रस कहते हैं। दास्य रस में भिन्नता होती है कि मैं निम्न श्रेणी का हूं, भगवान श्रेष्ठ है, भगवान का स्तर बहुत ऊंचा है हमसे। परंतु इससे भी आगे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ऐसी भी भक्ति हो सकती है जिसमें कि ये अंतर नहीं रह जाता कि मैं निम्न श्रेणी का हूं, भगवान ऊपर की श्रेणी के हैं। जब भक्त अपने आप को भगवान से बराबर सोचने लगता है तब वो मित्रता के संबंध को स्थापित करता है भगवान के साथ में, इसे सख्य रस कहते हैं। सखा, सखा अर्थात मित्र, ये बहुत ऊंचा स्तर है जिसमें भक्त अपने आप को भगवान से बराबर समझता है, भगवान से कुश्ती करता है, भगवान को चढ़ाता है, भगवान से कुछ उनका भोजन चोरी कर लेता है, भगवान के पीठ पर बैठ जाता है, भगवान के साथ हंसी मजाक करता है, प्रेम में, शुद्ध प्रेम में। और इससे भी आगे जब बात बढ़ती है, जब श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना तीव्र हो जाता है कि जब अब भक्त न केवल अपने आप को भगवान से बराबर समझता है, अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानता है, दास रस में, शांत रस में भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है और अपने आप को निम्न श्रेणी का मानता है। सख्य रस में एक प्रकार की बराबरी होती है भावना के दृष्टिकोण से, परंतु जब व्यक्ति सख्य रस को भी पार करता है तो तब वो वात्सल्य रस का अनुभव करता है जिसमें कि वो अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानने लगता है। ये बहुत एक विचित्र अद्भुत एक धारणा है जो कि साधारण भक्तों को नहीं मिल सकता, सख्य रस भी साधारण भक्तों को नहीं मिल सकता। दुनिया में जो कृष्ण भक्ति के रीतियों से और गुह्य तत्वों से भले भांति परिचित नहीं है, उनको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम भगवान के मित्र हो सकते हैं, हम भगवान के माता पिता हो सकते हैं। और जब उनको बताया जाता है कि वात्सल्य रस से भी बढ़कर हम श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मान सकते हैं, तो उनका सर ही चकरा जाता है कि ऐसे कैसे संभव है, इस तरह की भावना ये तो शुद्ध नहीं है, प्रेमी प्रेमिका की भावना तो शुद्ध नहीं होती, ये तो दुनिया की संबंध है। हाँ, जब तक ये दुनिया के लोगों के बीच में है तब तक ये शुद्ध नहीं है, परंतु जब ऐसी भावना भगवान के प्रति केंद्रित की जाती है तो वो पूर्णतया शुद्ध हो जाती है। बल्कि वृंदावन के भक्ति भाव में ये सबसे श्रेष्ठ प्रेम माना जाता है, भक्ति का सर्वोच्च स्थान स्तर माना जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई सस्ती चीज नहीं है जो सहज प्राप्त हो जाती है। नहीं ऐसे प्रेम का हमें नकल करना चाहिए, न कृत्रिम रूप से अपने आप में ऐसे प्रेम का प्रवेश आया है ऐसे समझ लेना चाहिए। हमारे साधारण भक्ति की अवस्था में जबकि हम साधक हैं, हम साधन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं भक्ति का, हमें तो अच्छी तरह से दास्य भावना भगवान के प्रति रखनी चाहिए। जैसे हम जब अर्चा विग्रह के सामने जाते हैं तो दास्य भावना रहनी चाहिए। विशेष करके जब हम भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, श्रृंगार आदि करते हैं तो बहुत सावधानी रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम कैसे भी व्यवहार करें जब हम सिंहासन पर जाए तो जोर से बात नहीं करना चाहिए, इशारे से एक दूसरे को समझाना चाहिए, बहुत ही भक्ति भाव से श्रद्धा से रहना चाहिए, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक भगवान के विग्रह के सामने रहना चाहिए, बहुत सावधानी से श्रृंगार करना चाहिए, कहीं भगवान को कोई चोट ना पहुंचे, अपने आप को भी बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्रों को पहनकर भगवान के सामने जाना चाहिए। तो जब इस तरह से हम सेवा करते हैं तो हम ये नहीं समझ सकते तो ये हमारे सखा हैं तो हम कैसे भी व्यवहार करेंगे जैसे वृंदावन में बाल बाल करते थे, नहीं वो बड़ा अपराध हो जाएगा। उसी तरह से जब हम मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए भी तो अनेक विधियां होती हैं, ऐसे नहीं कि हम कैसे भी कपड़े पहन के आए, गंदे अवस्था में आए, नहीं, हमें भी मंदिर आते समय स्वच्छ होना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ऐसे अनेक नियम हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है। और श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक ऐसे नियमों का उल्लेख किया है जिनका पालन न करने से सेवा अपराध हो जाता है भगवान के प्रति। ऐसे साधन भक्ति के नियमों का पालन करते करते हृदय का शुद्धिकरण जैसे जैसे होते रहता है वैसे वैसे श्री कृष्ण के प्रति तीव्र आकर्षण और भक्ति बढ़ते रहती है। और जब शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ऐसे तीव्र भाव प्रेम के उत्पन्न होते हैं हृदय में जिसमें एक स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उस समय हमारा प्रेम किसी नियमों के ऊपर आधारित नहीं होता है। इसे राग मार्ग का प्रेम कहते हैं। अब व्यक्ति नियमों को का देखभाल नहीं करता है, इसलिए नहीं कि वो नहीं करना चाहता है, उसके बस के बाहर हो जाती है, उसका प्रेम इतना तीव्र होता है कि वो नियमों के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वो जानता है कि ऐसे नियम है परंतु प्रेम के प्रवाह में बह जाता है। ऐसे वृंदावन के निवासी थे, तो ऐसे प्रेम के अवस्था में ही ये सख्य वात्सल्य माधुर्य प्रेम इत्यादि प्रकट होते हैं। शुद्ध दास्य प्रेम भी प्रेम के प्रेमा भक्ति की अवस्था में ही प्रकट होता है। इस समय हमारा जो प्रेम दास्य भाव में भगवान के प्रति है वो भी मिश्रित है, क्योंकि दास्य भावना अनेकों के प्रति हमारी है, अभी तक पूरी तरह से शत प्रतिशत केवल कृष्ण के ऊपर केंद्रित नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब स्वाभाविक भाव भक्ति का हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा तो उस समय इन अनेक रसों का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो इनमें से ये वात्सल्य प्रेम है। तो यद्यपि हम अब इस स्तर में नहीं है, फिर भी इन स्तरों के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सब उद्देश्य हैं। अब जब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे, हमारे आत्मा का जो नित्य संबंध है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इन पांचों रसों में से कौन सा हमारा संबंध है वो हम अब नहीं कह सकते। वो बाद में जब शुद्ध भक्त हो जाएंगे तब स्वयं भगवान प्रकट कराएंगे। हमें नहीं पता, न इस समय इसके बारे में कोई उत्सुकता होने की आवश्यकता है। इस समय केवल हम अच्छी तरह से विधि विधानों का पालन करें और साधन भक्ति अच्छी तरह से करके हम शुद्ध हो जाए, फिर सब कुछ अपने समय में हो जाएगा। तो वात्सल्य प्रेम क्या है? वात्सल्य प्रेम वो है जिसमें कई लक्षण हैं इसके, एक के बाद एक हम इनका वर्णन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माता यशोदा का जो संबंध श्री कृष्ण के साथ में है उसका वर्णन होना है। जब तक इस संबंध को हम नहीं जानते हैं तब तक हम दामोदर लीला को नहीं समझ पाएंगे ठीक से। तो जब हमारा प्रेम या भक्त का प्रेम इतना तीव्र बढ़ जाता है कि वो अपने आप को भगवान का एक माता या पिता समझने लगता है, या उस तरह का प्रेम होता है, तब वो वात्सल्य रस का संबंध कहलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब वात्सल्य रति के स्तर में भक्त स्थित होता है तो वो भगवान के प्रति, भगवान के बाल रूप के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होता है। विशेष करके जो पुष्टि मार्गी हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय के, वो इस भाव में ज्यादा जोर देते हैं। तो बाल गोपाल की सेवा बहुत करते हैं। तो जब ऐसे भक्त शुद्ध हो जाते हैं, वात्सल्य रति उनके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, तो उनका आकर्षण बाल कृष्ण के प्रति, बाल गोपाल के प्रति होता है। हम सत्यव्रत मुनि के दामोदर अष्टकम में ये देखते हैं कि दामोदर जो सत्यव्रत मुनि है केवल यही चाहते हैं। और जब हम कल से दामोदर अष्टकम की चर्चा करेंगे एक के बाद एक उन श्लोकों का, तब ये स्पष्ट होगा। तो खैर, ऐसे अवस्था में भक्त जो है जब भगवान के बाल लीलाओं का या बाल रूप का विचार करता है तो वो सोचता है कि अभी भगवान उनको भगवान नहीं मानता। वो सोचता है कि ये बच्चा जो है ये मेरे ऊपर निर्भर है और मुझे इस बच्चे की रक्षा करना होगा। जब रक्षा भगवान को मेरी चाहिए, जब ऐसे विचार होता है तो फिर व्यक्ति वात्सल्य रति में स्थित होता है। देखिए, हम सब श्री कृष्ण के पास जाते हैं श्री कृष्ण की रक्षा मांगने के लिए, चाहने के लिए। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये शरणागति का एक लक्षण है। अवश्य रक्षते कृष्ण विश्वास पालन। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि जब हमें पूर्ण विश्वास है कि अवश्य श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, तो फिर ये शरणागति का एक लक्षण है। तो हम तो शरणागत भक्त होना चाहते हैं श्री कृष्ण के। तो हमारा विचार ये है कि श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। परंतु अद्भुत बात देखिए, जब कोई भक्त वात्सल्य रति में स्थित होता है तो वो सोचता है या सोचती है कि श्री कृष्ण की रक्षा मुझे करनी चाहिए। ये अंतर है, ये बहुत ऊंचा स्तर है। और उस समय वात्सल्य रति के जो भक्त होते हैं ये शरणागति आदि के भावनाओं से आगे काफी निकल चुके होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान के शरण में नहीं है, अवश्य है, परंतु इतना गहरा शरण उनका है और इस शरणागति के द्वारा उनका प्रेम इतना मधुर और इतना तीव्र और इतना ऊंचा हो गया है कि वो सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे शरण में है, श्री कृष्ण मेरे शरणागति में है ऐसा सोचते हैं, तो ये वात्सल्य रस के भक्त हैं। और साथ साथ में भक्त जो है वो अपने आप ऐसा स्थान ग्रहण करते हैं जिसमें कि स्वयं भगवान उनकी उपासना करते हैं। एक साधारण भक्त या शरणागत भक्त भी भगवान की उपासना करता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य रति में स्थित होने वाले भक्त की उपासना करते हैं। जब श्री कृष्ण सुबह को उठते हैं तो वो जाके माता यशोदा नंद बाबा के पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, जैसे कि बच्चों को माता पिता के प्रति एक आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो श्री कृष्ण के सामने आके माता यशोदा नंद महाराज आरती नहीं करते हैं, बल्कि नंद श्री कृष्ण आके उनके पैर छूते हैं। तो ये एक लक्षण है वात्सल्य रति का। और साथ साथ में भक्त के अंदर ये एक इच्छा होती है या एक भावना होती है कि मैं श्री कृष्ण का पालक हूं और मुझे श्री कृष्ण का भरण पोषण करना चाहिए, जैसे एक पालक अपने पुत्र का भरण पोषण करता है। तो श्री कृष्ण मुझ पर निर्भर है, यदि मैंने श्री कृष्ण को खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, तो कमजोर हो जाएगा, ये बीमार पड़ जाएगा, कोई हानि पड़ जाएगी। तो ऐसे एक चिंता रहती है भक्त को भगवान की सुरक्षा के लिए, भगवान के हित के लिए। साधारण भक्त तो जानता है कि भगवान मेरे हितैषी हैं, सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो भक्त के मन में शांति होती है, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब श्री कृष्ण सर्व समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, शुभ चिंतक हैं, सर्वभूतानां सारे प्राणियों के, तो ये एक शांति का सूत्र है। तो भक्त को बहुत शांति की भावना होती है कि वैसे श्री कृष्ण मेरे शुभ चिंतक हैं और वो मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण मेरी चिंता करते हैं, मेरे भलाई का विचार करते हैं, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता। तो ऐसा भक्त निश्चिंत रहता है, चिंता मुक्त रहता है, निडर रहता है। परंतु वात्सल्य रस में उल्टा हो जाता है, श्री कृष्ण निश्चिंत रहते हैं और भक्त चिंता करने लगता है कि अरे इतने असुर आ रहे हैं, अब एक के बाद एक आ रहे हैं, अब क्या होगा हमारे लाडले कृष्ण का, हमें उसे रक्षा उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसे भक्त सोचने लगता है, जब बार बार असुर आया करते थे, कंस द्वारा भेजे गए कृष्ण की को मारने के लिए, और हर बार श्री कृष्ण उनका वध कर देते थे, तो जितने भी वरिष्ठ गोप गोपियां थीं वृंदावन में, वो सब इकट्ठे मिलते थे कि क्या किया जाए श्री कृष्ण को सुरक्षित रखने के लिए। श्री कृष्ण को कोई चिंता नहीं थी, भक्तों को चिंता थी कि कैसे श्री कृष्ण की रक्षा की जाए, कैसे श्री कृष्ण को सुरक्षित रखा जाए, कोई हानि ना पहुंचे। और फिर तरह तरह के उपाय सोचते थे। फिर एक बार जब सभा हुई ब्रजवासियों की, तो नंद महाराज के बड़े भाई उपनंद ने कहा कि अब हमें यहाँ गोकुल में नहीं रहना चाहिए, यह बहुत सारे असुर आ रहे हैं, चलो हम स्थान बदल लेते हैं, गोकुल छोड़ देते हैं। तो गोकुल छोड़कर फिर वो चले गए छटीकरा वृंदावन में। वृंदावन में आके बसे केवल इसलिए कि वो श्री कृष्ण के सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। देखिए भूमिकाएं कैसे उल्टी हो गईं। अब भगवान चिंता नहीं करते हैं, अब भक्त चिंता करते हैं। साधारण भक्तों के उदाहरण में हम देखते हैं कि भक्त लोग चिंतित अवस्था में या भक्त जब पीड़ित अवस्था में भगवान को बुलाते हैं, भगवान तनाव लेते हैं, अरे मेरे भक्तों को कितना कष्ट हो रहा है। जैसे कि जब पांडव वनवास में थे, श्री कृष्ण बीच बीच में आया करते थे, बहुत चिंतित थे, जब भी परेशानी होती थी तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे। परंतु अब देखिए कितनी अद्भुत परिस्थिति कि भक्त इतना चिंता इतनी चिंता कर रहे हैं, और फिर वो अपने अब भगवान को अपना पुत्र समझ के उनको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा भला हो, चिरंजीवी भव। भगवान को आशीर्वाद देते हैं और फिर आगे चल के कभी कभी स्नेह के तीव्रता के कारण, भगवान को अपना पुत्र समझने के कारण, वो श्री कृष्ण को कभी डांटते भी हैं, भर्त्सना करते हैं, कभी दंड भी देते हैं श्री कृष्ण को। अब साधारण दुनिया पे तो सभी श्री कृष्ण के कड़े भौतिक नियमों के द्वारा पीड़ित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्री कृष्ण के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करके बच सकता है, दंड मिलना ही होगा उसे। बल्कि श्री कृष्ण के डर में सभी लोग चल रहे हैं, श्री कृष्ण दंड देंगे। जहां यहां तक कि जब हम भक्त भी बनते हैं और हमारे प्राथमिक स्थान में भगवान के प्रति थोड़ा डर रहता है कि कोई पाप करेंगे तो भगवान का दंड मिलेगा, परंतु अब वात्सल्य रस की अवस्था में अब भगवान के भक्त हैं, वो कभी कभी भगवान को दंड देते हैं और भगवान उनसे डरते भी हैं। इस तरह से ऐसे मधुर एक संबंध श्री कृष्ण और उनके वात्सल्य रस के भक्तों के बीच में होता है। जब भक्त अपने आप को भगवान का पालन पोषण करने वाला समझता है, भर्ता समझता है, तब दोनों भक्त और भगवान को बड़ा आनंद आता है, तीव्र दिव्य आनंद की अनुभूति दोनों को होती है। और जैसे जैसे एक दूसरे के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वैसे वैसे इस दिव्य प्रेम की वृद्धि होती रहती है। और ऐसा ही प्रेम श्री कृष्ण चाहते हैं। दुनिया में लोग भगवान को अपना पिता मान के हमेशा उनके पास जाते हैं कि हमें आप ये दीजिए, वो दीजिए, हम ये वरदान दीजिए, वो आशीर्वाद दीजिए। परंतु अब श्री कृष्ण कहते हैं बहुत हो गया, अब मैं मेरे भक्तों के साथ आऊंगा, अब मैं उनको परेशान करूंगा, मुझे मक्खन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और नंद महाराज माता यशोदा उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। परिस्थिति उलट जाती है और इसमें प्रेम अधिक हो जाता है। ये है वात्सल्य रस की विशेषता। तो जो रस, जो आनंद या जो गुण शांत रस में है, वो दास्य रस में भी है, परंतु दास्य रस में वो एक गुण है जो शांत रस में नहीं है, और वो है सेवा का विकास, सेवा भाव का विकास। इसलिए शांत रस में एक गुण है तो दास्य रस में दो गुण है। और जब व्यक्ति सख्य रस में होता है तो जो गुण दास्य रस में होते हैं, दो गुण वो तो है ही है, साथ साथ एक अधिक गुण होता है, और वो है कि श्री कृष्ण के प्रति एक निकटता है जिसमें एक बराबरी की भावना होती है, जो कि दास्य रस में नहीं होती। तो सख्य रस में तीन गुण होते हैं, शांत रस के गुण, दास्य रस के गुण, और अधिक एक गुण जो केवल सख्य रस में होता है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण के मित्र जो ग्वाल बाल है वृंदावन के, श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और फिर जब वात्सल्य रस के भक्त होते हैं, उनके अंदर चार गुण होते हैं, शांत रस के गुण, दास्य रस के गुण और सख्य रस के गुण तो होते ही होते हैं, साथ साथ एक और गुण होता है जो इन तीन रसों में नहीं होते हैं, और वो गुण क्या है कि भक्त अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानता है, प्रेम में, अज्ञान में नहीं है। साधारण दुनिया में अज्ञान में भी कोई लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं, वो तो गहरा अज्ञान का अंधकार है, उनको तो नरक जाना पड़ेगा। परंतु ऐसे शुद्ध भक्ति की भावना में भी भक्त अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानने लगता है। तो इन दो भावनाओं में, इन दो परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो शुद्ध अज्ञान है, घोर अंधकार है, और दूसरा शुद्ध प्रेम का सर्वोच्च शिखर है। तो इसलिए वात्सल्य प्रेम में ये चार गुण होते हैं और आगे चल के माधुरी रस में पांच गुण होते हैं। पहले चार गुण तो है ही और विशेष करके एक ऐसा गुण है वो निकटता का गुण जो कि वात्सल्य में भी नहीं पाया जाता। थोड़े बंधन होते हैं वात्सल्य में भी, लेकिन माधुरी रस के अवस्था में ये बंधन भी पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो खैर अब चर्चा तो वात्सल्य रस की होती है, हो रही है। तो जो वात्सल्य रस के भक्त हैं उनकी भावना ऐसी होती है। सख्य रस के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरो कृतपुण्यपुञ्जा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान को केवल निराकार मानते हैं, ऐसे भी कई लोग होते हैं जो भगवान को एक साधारण बालक मानते हैं। ये तो माया के आश्रित होते हैं, मायाश्रितानां नरदारकेण। और जो ऐसे भी भक्त होते हैं साधारण, जो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, परंतु इन ग्वाल बालों में कौन से पुण्य किए होंगे जिसके द्वारा वो अभी भगवान को अपना मित्र मानते हैं और बराबरी से उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे जो सख्य रस में रमण करने वाले ग्वाल बाल हैं, सखा हैं श्री कृष्ण के वृंदावन में, वो भगवान को अपना मित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से माता यशोदा और नंद महाराज श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं। देखिए कितनी विशेष बात है। और वैसे इस श्लोक की चर्चा हमने की नंदह के मकरोद भ्रमण, जिसके ऊपर हम व्याख्या कर रहे थे। तो इसके पहले वाले श्लोक में माता यशोदा के शुद्ध प्रेम का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और वो कहते हैं, तैया चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यम हरिं सामानितात्मजम्। वो कहते हैं कि वैसे कर्म कांड में, ज्ञान कांड में, उपासना कांड में, जितने भी वैदिक शास्त्रों में है वो भगवान का गुणगान किया हुआ है और भगवान को तह तह से संबोधित किया गया है। धारणा भगवान के बारे में भिन्न भिन्न रहती है। जैसे कि वेदों में भगवान को इंद्र का स्वर्ग का राजा माना जाता है। जब उपनिषदों की बात आती है तो श्री कृष्ण के प्रति क्या भावना रहती है कि ये निराकार ब्रह्म है। दर्शन के दृष्टि से, दार्शनिक शास्त्रों के दृष्टि से श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। योगियों के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण सबके हृदय में स्थित परमात्मा हैं। साधारण भक्तों के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण आराध्य देव हैं, परंतु माता यशोदा के दृष्टि से श्री कृष्ण केवल उनका पुत्र है। बस कोई यदि माता यशोदा को जाके बताएगा कि अरे आप कैसे डांट रहे हो आपके आपके पुत्र को, आप क्या नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है, तो माता यशोदा कभी विश्वास नहीं करेंगे। बोला आप सही नहीं बोल रहे हो, आपको पता नहीं, ये बच्चा जो मेरे ऊपर इतनी तीव्रता से निर्भर है वो भगवान कैसे हो सकता है, वो तो मेरा पुत्र है। आप केवल अज्ञान के कारण ऐसे बोलते हो। तो ये माता यशोदा का स्थान है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे वात्सल्य प्रेम में भाव विभोर होकर माता यशोदा कैसी बात करती है। जब कोई गोपी उनके पास आती है तो वो कहती है, अरे ये तो मेरा लाडला है, अब देखो आप लोग कहते हो कि श्री कृष्ण ने इतने सारे असुरों का वध किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वास्तव में इन असुरों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि मेरे पति नंद महाराज और मैंने भगवान विष्णु की खूब सेवा की थी, इसलिए हुआ। ऐसे नहीं कि हमारे लाडले बच्चे ने इनका वध कर दिया, ये तो छोटा बच्चा है, वो कैसे करेगा। और जब आप सोच रहे हो कि उन्होंने ये दो विशाल अर्जुन वृक्षों को उखल को खींच के गिरा दिया, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि वास्तव में हमारे लाडले बच्चे ने थोड़ी गिराया इनको, ये तो तूफान के कारण गिर गए दो बड़े बड़े पेड़, नहीं तो ये छोटा बच्चा कैसे दो बड़े पेड़ों को गिरा सकता है। और जहां तक गोवर्धन उठाने की बात है, आपने कभी सुना है कि एक छोटे बच्चे ने ऐसे बड़े पहाड़ को 7 दिन के लगातार उठाया होगा? क्या ऐसे संभव है? आप तो समझदार लोग हैं, आपको जानना चाहिए ये सब। वास्तव में मैं समझती हूँ कि मेरे पति नंद महाराज ने अन्य गोपों की सहायता से गोवर्धन उठाया, इसलिए श्री कृष्ण तो केवल मेरा लाडला है, इसने नहीं उठाया गोवर्धन पर्वत को। तो ये माता यशोदा की भावना है। साधारण दुनिया के वात्सल्य स्नेह में भी एक साधारण माता अपने बच्चे से भी इतना प्रेम करती है कि उसे सबसे सुंदर बच्चा मानती है, भले बच्चा क्रूर हो, परंतु माता के दृष्टि में तो बच्चा सबसे सुंदर होता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन में बताते हैं कि यदि कोई बच्चा अंधा भी हो, फिर भी माता के दृष्टिकोण से वो उसे पद्मलोचन कह के पुकारेगी। तो साधारण भौतिक दुनिया का स्नेह भी यदि इतना तीव्र है कि प्रेम माता को अंधा बना देती है, कुरूप बच्चे को सुंदर मानने लगती है और अंधे बच्चे को भी पद्म नयन या पद्म लोचन कह के पुकारती है, तो फिर ऐसे तीव्र आध्यात्मिक दिव्य प्रेम से युक्त माता यशोदा क्यों नहीं ऐसा सोचेंगे कृष्ण के बारे में? बल्कि प्रेम है ही, जिसमें कि तरह तरह के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के रास्ते बताए गए हैं, जिसके द्वारा हमें भौतिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। केवल भौतिक प्रगति के लिए जो चाहते हैं वेदों का पालन करना, वो कर्मकांडीय शास्त्रों के पास जाते हैं। परंतु जब व्यक्ति धीरे धीरे से जानने लगता है वेदों का पालन करके कि इस दुनिया के भीतर मुझे कुछ सीखना नहीं चाहिए या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, दुनिया के परे मुझे जाना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य इस दुनिया के भीतर ना होकर दुनिया से परे होना चाहिए, तब वो ज्ञान कांड के लिए तैयार हो जाता है। ज्ञान कांड के शास्त्रों जैसे अनेक उपनिषद हैं, जिनमें के विशेष करके भगवान के निराकार स्वरूप का उल्लेख किया जाता है, क्योंकि ज्ञान कांड के लोग इसी तरह के उपासना पसंद करते हैं। साथ साथ में तीसरा कांड है जिसे उपासना कांड कहते हैं, तरह तरह की उपासनाओं का वर्णन है। शास्त्रों में बताया है कि सर्वश्रेष्ठ उपासना भगवान विष्णु या कृष्ण की है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य बताते हैं कि माता पार्वती वो शिव जी से कहती हैं कि सबसे श्रेष्ठ उपासना कौन सी है, तो शिव जी उत्तर देते हैं, आराधनानाम सर्वेशां विष्णु और आराधनम परम, कि समस्त प्रकार के आराधनाओं में से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उपासना कांड की परिपूर्णता के अवस्था को प्राप्त करने पर व्यक्ति श्री कृष्ण या श्री विष्णु की उपासना करता है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में हम कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि माता यशोदा ने ऐसी उपासना श्री कृष्ण की हो, बल्कि माता यशोदा के हृदय में इतना तीव्र प्रेम था कि वो केवल श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझती थी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ माता यशोदा देवकी के गर्भ से, अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और भगवान के रूप में उन्होंने आश्वासन दिया देवकी और वसुदेव को, तो उस समय देवकी का जो वात्सल्य भाव है तो वो थोड़ा सा भंग हो गया। आगे चल के भी जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा आए और उन्होंने कंस आदि असुरों का वध किया, उस समय भी माता देवकी और वसुदेव के वात्सल्य भाव का भाव जो शिथिल हो गया, कमजोर हो गया। परंतु माता यशोदा का वात्सल्य भाव कभी भी कमजोर नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णतया अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने के बाद भी माता यशोदा केवल ये सोच रही थी कि ये मेरा लाडला पुत्र ही है। जैसे हमने कहा, गोवर्धन पर्वत उठाना एक 7 साल के बच्चे के लिए, 7 साल क्या, एक 37 साल के आदमी के लिए भी संभव है क्या? नहीं है। फिर भी माता यशोदा के हृदय में ऐश्वर्य की भावना उत्पन्न नहीं हुई कि अरे ये हमारा बेटा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पहाड़ उठाया, नहीं। फिर भी जब श्री कृष्ण 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए थे, उस समय भी माता यशोदा ने श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही माना और पुत्र के अलावा कुछ नहीं माना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता यशोदा देव की माता से भी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वेदों में, वेदों का पालन जब तक व्यक्ति नहीं करता, प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति मनुष्य नहीं कहा जाता, केवल एक द्विपद पशु है, 2 पैरों वाला पशु है। केवल वैदिक सभ्यता का पालन करना जब शुरू करता है व्यक्ति, तब वो वास्तव में एक मनुष्य या नर कहलाता है। आगे चल के जब उपनिषदों के बारे में सुनकर जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर निराकार ब्रह्म की ओर आकर्षित होता है। फिर सांख्य योग समझ लेता है, जैसे कि भगवद गीता में है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, आदि देव है इत्यादि। तो ऐसे निष्कर्ष या विश्लेषण के द्वारा सांख्य, सांख्य मतलब संख्या, गणना, विश्लेषण, तो ऐसे सांख्य योग के द्वारा जब व्यक्ति निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि वासुदेव है सर्वमिति, कि श्री कृष्ण सब कुछ है, तो वो बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचता है। फिर आगे चल के वो भगवान को अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के रूप में भी जान लेता है। तो ऐसे कई तरह से आत्म साक्षात्कार के पथ में चलने वाले साधक आदि होते हैं, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता यशोदा इन स्तरों को पार करके बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। इसलिए माता यशोदा को वेदों से क्या लेना देना, उपनिषदों से क्या लेना देना, उनको ये सांख्य योग आदि से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं माता यशोदा को। इन सब का जो परिपूर्ण फल है, सबसे ऊंचा लाभ है, वो उनको प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण के प्रति ऐसी तीव्र भक्ति उनको प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं माता देवक यशोदा और नंद महाराज के सौभाग्य के बारे में, और विशेष करके माता यशोदा के सौभाग्य। कल हम ये भी बता रहे थे कि द्रोण और धर ये 2 वसु थे जिनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि आप जाओ, अभी आपको आपकी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको पृथ्वीलोक में जाना होगा। उन्होंने निवेदन किया कि भगवान हमारे पुत्र बने, तो इच्छा पूरी कर दी थी, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और इसलिए वो द्रोण और धरा नंद महाराज और माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। जब परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न कर रहे थे, नंदह किम अकरो ब्रह्मन, कि नंद महाराज ने ऐसे कौन सी सुकृति, तपस्या, प्रार्थना आदि की थी जिसके द्वारा कि वो माता पिता बन गए श्री कृष्ण के। परीक्षित महाराज को पता था कि नंद महाराज और माता यशोदा ये साधारण साधन भक्ति से सिद्ध होने वाले भक्त नहीं है। तपस्या करके, साधन भजन करके वो इस स्तर पर पहुंचे हैं कि अब वो माता पिता बन गए श्री कृष्ण के। नहीं, माता यशोदा नंद महाराज ऐसे नहीं है, परीक्षित महाराज जानते थे। परंतु हम सब के लिए इस महत्वपूर्ण तत्व का स्पष्टीकरण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। क्योंकि आगे चल के सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे कि हाँ देखो, आपने पूछा है कि उन्होंने क्या क्या किया होगा, उन्होंने तब जाके द्रोण और धरा इनका वर्णन करते हैं। और अब जब परीक्षित महाराज इस बात को सुनते हैं कि द्रोण और धरा यहां पर नंद महाराज बन गए, तो उनको कुछ संतुष्टि नहीं हुई। वास्तव में सत्य तो ये है कि नंद महाराज और यशोदा माता, जैसे कि हम कल बता रहे थे, ये हम जैसे जीवात्माएं नहीं हैं, ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रत्यक्ष विस्तार हैं वो। इसलिए नंद महाराज और यशोदा ये पद नहीं है जो कि कोई प्राप्त कर सकते हैं। द्रोण और धरा ये वास्तव में नंद महाराज और माता यशोदा के विस्तार है। जब कोई जीव भी ऐसे वात्सल्य रस का अनुभव करना चाहते हैं और उनकी भक्ति भी इतनी शुद्ध हो चुकी होती है, भौतिक कलमशों से पूर्णतया मुक्त हो चुके होते हैं, तब भगवान कृष्ण की कृपा से उन आत्माओं को नंद महाराज या माता यशोदा जैसे भगवान के पार्षदों में प्रविष्ट होने का सुअवसर मिलता है, जिससे कि उसी भाव को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु वो नंद महाराज और माता यशोदा नहीं बन सकते हैं। जिस तरह से कोई भगवान नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार से कोई नंद महाराज और माता यशोदा नहीं बन सकता, परंतु उनके भाव को अवश्य वो ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे नंद महाराज और माता यशोदा जो हैं, ये नित्य सिद्ध पार्षद हैं। इसलिए जब उन्होंने ऐसे प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने, और द्रोण और धरा का उदाहरण सुखदेव गोस्वामी ने दिया, तो उनको पता चला कि परीक्षित महाराज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है इस द्रोण और धरा के उदाहरण से, इस दृष्टांत से। इसलिए उनके हृदय को शांत करने के लिए, उनको सही तत्व गहराई में समझाने के लिए, फिर आगे चल के उन्होंने ये दामोदर लीला का वर्णन किया। तो द्रोण और धरा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये साधन सिद्ध है। उन्होंने साधन किए थे और साधन के कारण उनको अब नंद महाराज और माता यशोदा के शरीर में प्रविष्ट होने का अवसर प्राप्त हुआ। माता यशोदा नंद महाराज सीधे श्री कृष्ण के पास का साथ में गोलोक वृंदावन से प्रकट हुए थे। तो अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 9वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें कि माता यशोदा किस तरह से श्री कृष्ण को उखल से बांधती हैं, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। बहुत सुंदर ये लीला है, और अब तक जो चर्चा हुई वो एक प्रकार की पृष्ठभूमि है। तो अंततः हमें जानना चाहिए कि माता यशोदा के अंदर वो क्या योग्यता थी जिसके द्वारा वो भगवान को भी बांध सके। भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान के कड़े नियम में हम सब यहां दुनिया में बंधे हुए हैं। ते पीछे तंत्र उदाम बद्धा है, प्रहलाद जी कहते हैं। सभी लोग भगवान के भौतिक सृष्टि के कड़े नियम में बंधे हुए हैं, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को बांध रही है। इसलिए ये लीला बहुत अद्भुत है, बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है और भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। और विशेष करके इस दामोदर महीने में अवश्य इस लीला का विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, क्योंकि ये महीना भी दामोदर महीना है। दामोदर अष्टकम गाना चाहिए ऐसे शास्त्र में बताया गया है, पद्म पुराण में। तो विशेष करके ये दामोदर लीला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, एक 10-15 मिनट बचे हैं आज की कथा के लिए। तो इसमें दामोदर लीला की शुरुआत के जो श्लोक हैं उनको हम सुन लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा बृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरं युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्ममंथे काले स्मरन्ति तान्यभायत। एकदा, एक बार, मराठी में भी एकदा बोलते हैं। एकदा मतलब एक बार। गृहदासीषु घर की जो नौकरानियां थीं, कर्मांतर नियुक्तासु अन्य कर्मों में जब व्यस्त थे, तो यशोदा नंद गेहिनी, माता यशोदा जो कि नंद महाराज की धर्मपत्नी थीं, निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं दही का मंथन करने लगी। वैसे इसका मतलब है कि कभी कभी अन्य जो घर की दासियां थी, अन्य गोपियां थी, वो भी ये सब काम किया करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एक बहुत आचार्य हैं बड़े हमारे संप्रदाय के, वो बताते हैं कि वात्सल्य रस का एक जिद भी था माता यशोदा में कि मेरे बच्चे का देखभाल केवल मैं ही कर सकती हूँ और कोई मेरे बच्चे का देखभाल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे को खिलाने के लिए जो दही मक्खन दूध आदि होना चाहिए वो मेरे हाथों से ही बनना चाहिए, क्योंकि मैं जिस प्रेम से, जितनी सावधानी से, जितने परिश्रम से बनाऊंगी वो और कोई नहीं बना पाएगा। और वास्तव में सही है कि कोई चीज अच्छी बनती है जब उस कार्य में प्रेम होता है। इसलिए हम जब श्री कृष्ण के लिए कोई सेवा करते हैं, चाहे वो मंदिर मार्जन का सेवा हो, रसोई बनाने का सेवा हो, जप करने का सेवा हो, श्रवण करने की सेवा हो, कोई हिसाब किताब मंदिर के लिए रखने का सेवा हो, कोई भी सेवा क्यों ना हो, हमें भी बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से करना चाहिए। हाँ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे हमारे जैसे सेवा नहीं कर सकते, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। ये माता यशोदा अपने तीव्र ऊंचे वात्सल्य भाव में सोच रही हैं, परंतु तो हमारा स्थान तो माता यशोदा का नहीं है। तो हमें अन्य भक्तों के साथ में ऐसे प्रेम से, भक्ति भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो खैर, निर्ममंथ स्वयं दधि, तो स्वयं वो मंथन करने लगी दही का। और जब मंथन कर रही थी तो क्या कर रही थी, यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्ममंथे मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। कि जब वो मंथन कर रही थी दधि निर्ममंथने काले, दही मंथन के काल में स्मरन्ति वो याद कर रही थी। क्या याद कर रही थी, तानि जितने भी भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं हैं, तद बाल चरितानि च उन लीलाओं को, उनके बाल लीलाओं को स्मरण करके फिर यानी यानी है गीतानी गीत रूप में उनको गा रही थी। कितना सुंदर दृश्य है, मन में चित्र बनाइए। माता यशोदा दही मंथन कर रही हैं, साथ साथ में श्री कृष्ण के सुंदर बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए इन्हीं बाल लीलाओं को कविता या गीत के रूप में गा रही हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे प्रथा थी वैसे भारत में कि कोई यदि किसी चीज को बारंबार याद रखना चाहता था तो उसको कविता के रूप में वैसे वो लिखता था। यदि वो स्वयं कविता लिखने के लिए योग्य नहीं होता था तो ऐसे कई कवि होते थे जिनको आप थोड़ी दक्षिणा देने से वो आप जिस विषय को स्मरण करना चाहते हैं वो कविता के रूप में रचित कर देते थे। फिर कविता को बारंबार गीत रूप में गा के जो कवि सिखाता था इसका गायन होते रहता था। तो वृंदावन में जितने भी लीलाएं हुआ करती थी कविता के रूप में वृंदावन में रहने वाले कवि गीत रूप में लिख देते थे। इसका मतलब ये है कि एक पूर्ण समाज के लिए तरह तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। संगीतकार भी चाहिए, कवि भी चाहिए, वैद्य भी चाहिए, गौ रक्षा करने वाले वैश्य भी चाहिए, वाणिज्य करने वाले वैश्य चाहिए, रक्षा करने वाले क्षत्रिय चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए जो उपदेश दे सके शास्त्रों का, तरह तरह के लोग चाहिए। तो ये स्पष्ट होता है कि वृंदावन में ऐसे कवि भी रहा करते थे। जैसे जैसे दिन के अंत में पता चलता था कि श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीला आज की तो सारे वृंदावन के निवासी कवियों के पास जाते, कहते देखो ऐसे ऐसे लीला हुई आज श्री कृष्ण की, तो ये कवि इन कविता लिख देते और कोई संगीतकार उनको एक गीत के रूप में प्रस्तुत कर देते। फिर ब्रज में सभी लोग एक गीत गाने लग जाते। तो इसी तरह से माता यशोदा ऐसे ही गीत गाते गाते मंथन कर रही थी। तो ऐसे मंथन से बहुत बढ़िया मक्खन आदि बनता है जिसके द्वारा अच्छा घी भी बन सकता है। वैसे घी बनाने का ये सही तरीका है। आजकल तरह तरह से घी बनाया जाता है। आजकल अनेक जगहों में दूध ही नहीं मिलता तो फिर घी क्या बनाएंगे। दूध कह के जो दूध जब बेचा जाता है, कई बार देखा जाता है कि रासायनिक पदार्थों का मिश्रण करके बेचा जाता है। कई बार दूध ही नहीं होता है, केवल रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो दही कैसे बनेगा उसमें। ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तर भारत में, विशेष करके आजकल चल रहा है। कोई बता रहे थे कि भारत सरकार भी जानते हैं कि 75% दूध जो भारत में बेचा जाता है वो नकली दूध है, मतलब गाय का दूध नहीं है। जो भाग्यशाली है वो भैंस का दूध पा लेते हैं, कम से कम भैंस का तो दूध है, थोड़ा बहुत पानी भी मिला लेते हैं, चलो पानी तो पीते हैं, पर जो बाकी चीजें हैं वो रासायनिक पदार्थों से बनाते हैं। बहुत विकट समस्या सारे देश में है अभी। तो जब दूध ही नहीं मिलता शुद्ध गाय का तो फिर घी क्या मिलेगा, सही मक्खन क्या मिलेगा। और जहां पे गाय का दूध मिलता भी है तो सही तरह से घी नहीं बनाते हैं। सच्चा घी जो होता है वो ऐसे दही के या दही के मंथन से होता है। प्रभुपाद जी भी एक जगह बताते हैं कि घी बनाने का सही तरीका ऐसे है। वैदिक काल में ऐसे हुआ करता था कि हर एक घर में गाय होते हैं, गाय से जितना दूध है तो ये द्वितीय श्रेणी का घी है, असली घी नहीं है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कहा गया है घर्षणशील इति घृतम, जो घर्षण से बनाया जाता है वो घृत है। शीलत्वात इति घृतम घर्षण, तो इसलिए घी को ऐसे घर्षण के उत्पादन से होने के लिए वैसे उसका स्पर्श करने से ऐसे होना चाहिए, पर भी असली घी होता है। परंतु केवल मलाई से यदि मलाई का मंथन करके हम घी बनाए तो उसे सर्पी कहते हैं। प्रसर्पणशीलत्वात् इति सर्पी। तो जो असली घी के जो गुण होते हैं वो इस सर्पी में नहीं होते हैं। सर्पी मतलब जो फिसलता है। तो असली घी बनाया जाता है ऐसे मंथन करके जैसे माता यशोदा यहां बना रही थी। तो घर घर में ऐसे हमारे माता यशोदाएं होनी चाहिए, जो इस तरह से असली घी बनाए और सबको हृष्ट पुष्ट कर दें। वैसे आयुर्वेद शास्त्रों में तो घी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हम तो वैद्य नहीं हैं, इसलिए वैद्य को जितनी जानकारी है हमें तो बिल्कुल है ही नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत वो जानते हैं घी के बारे में। हम कुछ दो शब्द बताना चाहेंगे घी कथा, क्योंकि कृष्ण तो ग्वाल बाल है ना, ग्वाले हैं। तो कृष्ण कथा में घी कथा, दूध कथा, दही कथा, मक्खन कथा भी होनी चाहिए। ऐसे बताया जाता है कि क्योंकि गाय ये तरह तरह के जड़ी बूटियों को खाते हैं, घास को खाते हैं, तो सारे पादपों के और औषधों के जो सार हैं वो दूध में आ जाते हैं। गाय गुड़ दूध देती है घास खाकर, इसलिए उस दूध में ये सारे सत्व जो होते हैं, जो सार होता है घास आदि में, औषधियों में, वो सब दूध में आ जाता है। तो दूध इन सारे औषधियों का सार है और घी दूध का सार है। तो हम समझ सकते हैं कि घी कितना शक्तिशाली होगा। इसलिए घी के बारे में घृत के बारे में बहुत विस्तार में वर्णन है। घृत मतलब संस्कृत शब्द है घी के लिए। तो जहां भी आयुर्वेदिक शास्त्र में घृत कहा जाता है हमें समझना चाहिए कि गाय का घृत है, गाय के दूध से बनाया हुआ घी है। यदि गाय का घृत नहीं है तो फिर बताया होगा, स्पष्ट करके बताते हैं। परंतु जहां ये शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है, केवल घृत है, तो हमें समझना चाहिए कि गो घृत है। और ऐसे बताया जाता है कि जितना पुराना ये घी हो उतना अच्छा है। 100 वर्ष का पुराना घी हो तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और ऐसे पहले हुआ करता था कि मंदिरों में बड़े बड़े मटकों में घी रखा जाता था सदियों के लिए, भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आजकल मंदिरों में तो ऐसे नहीं किया जाता, अभी बाजार में से टिनों में लाया जाता है घी। वो कितना सही घी है नहीं है वो भी नहीं पता, लेकिन पहले मंदिरों में ऐसे रखा जाता था। मंदिरों की बात दूर है, घरों में भी ऐसे रखा जाता था। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे सोना चांदी गहने को देते थे, अगले पीढ़ी को वैसे घी भी देते थे कि चलो घी को संभाल के रखो, अपने बच्चों जब बड़े हो जाएंगे उनको देना उस समय, क्योंकि ऐसे घृत से फिर औषधियां बनती थी। तो घी के जो गुण हैं वो और बढ़ जाते थे। तो ऐसे घी औषधि तत्व इसमें बहुत सारे होते हैं, भोजन पकाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जठर अग्नि को बढ़ाने के लिए ये घी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अग्नि बढ़ाता है परंतु पित्त को नहीं बढ़ाता है, इसलिए वो ठंडक भी पैदा करता है। इसलिए जब कहा जाता है जब कोई ऐसी वस्तु को हम ग्रहण करते हैं जिसमें गर्मी पैदा हो जाएगी शरीर में, तो घी के साथ लेते हैं, क्योंकि घी वो ठंडक पैदा करती है। देखिए कितना सुंदर गुण है, जठर अग्नि को बढ़ाती है साथ साथ पित्त को बढ़ने नहीं देती, ताकि अग्नि खूब बढ़े, जठर अग्नि पचन शक्ति बढ़ जाए और ठंडक भी पहुंचे शरीर को। साथ साथ ये रसवर्धक है, ओजस वर्धक है, बुद्धिवर्धक है, स्मृति वर्धक है। बल्कि ऐसे बचाया जाता है कि ओजस शक्ति को बढ़ाने जैसा और शायद ही कोई पदार्थ नहीं होगा जैसा कि घी है। ओ ओजस शक्ति के द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। तो जो प्रतिदिन असली गोघृत को ग्रहण करता है उसे रोग नहीं होते हैं। और जो आम इत्यादि है, आम मतलब खाने वाला आम नहीं, आयुर्वेद के भाषा में आम मतलब जो नहीं पचन किया हुआ जो भोजन पेट के अंदर होता है उसे आम कहते हैं, उसको भी ये धीरे धीरे से निकाल देता है। तो खैर, और बहुत चर्चा की जा सकती है घृत के बारे में, परंतु ये मुख्य विषय नहीं है। केवल इतना हम जान ले कि गौ घृत कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए वृंदावन के जीवन हम कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई उत्सव आदि मनाया जाता था, खुशियां मनाई जाती थी, तो एक दूसरे के ऊपर घी और मक्खन और दही दूध आदि फेंकते थे। इतना दूध घी इनके पास था, बांट के भी इतना रहता था उनके पास में। आजकल घी इतना महंगा हो गया है कि बस सोने की तरह उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ा सा इतना जितना सा कुछ लेंगे तो बस इतनी महंगाई है आजकल, क्योंकि गाय ही नहीं बचे हैं। तो वृंदावन की संस्कृति, वृंदावन की सभ्यता इतनी अच्छी है या इतनी अच्छी थी कि माता यशोदा के उदाहरण से हम जान सकते हैं। तो आगे चल कल हम फिर से शुरू करेंगे कि माता यशोदा ऐसे जब दही का मंथन कर रही थी, साथ साथ कृष्ण कथा गा रही थी गीत रूप में, तो उसके बाद क्या हुआ, हम इसकी चर्चा कल यहाँ 6 बजे करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।